मेरे प्रिय युवा मित्रों, नमस्कार। दोस्तों, आज के मुख्य विषय के तहत अभी जो आपके प्री एग्जामिनेशन होने वाले हैं, इसमें आपका लक्ष्य क्या होना चाहिए, कैसे आप उसे पा सकते हैं, क्या कर सकते हैं, इसके बारे में कुछ बातें करूंगा। लेकिन इससे पहले मैं दो आर्टिकल्स के बारे में अपने कुछ गाइडेंस आपको देना चाहूंगा। अभी बहुत सारे जो टॉपर्स हैं उनकी बातें आपको पढ़ने को सुनने को मिल रही होंगी। आप लोग सच में इस मायने में बहुत सौभाग्यशाली युग में रह रहे हैं, जबकि आपको सारी सूचनाएं इतनी जल्दी मिल जाती हैं। 1980 के आसपास जब हम लोग सिविल सर्विस एग्जामिनेशन में बैठते थे तो यही पता नहीं लगता था कि किसका स्कोर कितना है, उससे कैसे बात करें, वो क्या कहना चाहते हैं। कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन की जो कुछ एक इक्की दुक्की मैगजीन्स निकलती थी, उन्हीं में उनके इंटरव्यू छप जाते थे। आप पढ़ लीजिए, अगर आपको मिल गया तो बस बात खत्म हो गई। लेकिन आप एक ऐसे खूबसूरत युग में रह रहे हैं, ऐसे आप एनर्जाइज युग में रह रहे हैं, एनर्जेटिक युग में रह रहे हैं, जहाँ आपको तुरंत सारी बातें पता लग जाती हैं। और अभी आप देखिए, जो टॉपर्स आ रहे हैं अपने अपने ढंग से अपनी अपनी बातों को रख रहे हैं, अपने अनुभव आपके साथ शेयर कर रहे हैं। और मुझे लगता है कि ज्ञान की तुलना में अनुभव कई गुना ज़्यादा मायने रखता है, उसका वजन होता है, उसमें सच्चाइयाँ भी होती हैं, बशर्ते कि अनुभव को सही तरीके से शेयर किया जाए। तो खासकर मुझे लगता है कि अभी आप जो कुछ भी सुन रहे हैं बहुत ध्यान से सुने। अभी तो चूंकि अगर आप प्री में बैठ रहे होंगे तो डेफिनेटली अभी आप उस पर ज़्यादा ध्यान मत दीजिए, लेकिन एग्ज़ाम तो बस अब होने ही वाले हैं, उसके बाद आप इत्मीनान से सुनिएगा। और सुनने के बाद आप जरूर अपने लिए एक रणनीति तैयार कर लीजिएगा। जो जो बातें आप सुन रहे हैं उन्हें आप नोट करते जाएं, उसमें से जो बातें आपको महत्वपूर्ण मालूम पड़ती हैं उन्हें नोट करते जाएं। इस तरीके से आपके पास कुछ कंटेंट इकट्ठा हो जाएगा, और इसके बाद फिर उन सब को पढ़ने के बाद फिर आप अपनी एक रणनीति तैयार कीजिए कि मुझे ऐसे ऐसे अपनी पढ़ाई करनी है, ऐसे ऐसे मुझे एग्ज़ाम का प्लान तैयार करना है। इसके बारे में मैं भी अपने इनपुट बीच बीच में आप सबको देता रहूँगा, ताकि आपको इसमें हो सका तो शायद कुछ मदद मिल सके। इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते हुए जो कुछ भी मैंने सुना है, जो मैंने महसूस किया है, उसको ध्यान में रखते हुए डेफिनेटली मैं भी लगातार अपने डेली ऑडियो लेक्चर्स का जो फ्रेम होता है, उसकी जो बुनावट होती है, उसमें परिवर्तन करता रहता हूँ, भले ही ऊपरी तौर पर आप लोगों की पकड़ में वे बातें न आ रही हों। अब दोस्तों, मैंने फैसला किया है कि हालांकि पहले भी मैं कर रहा था, लेकिन अब मैं उस बात पर ज़्यादा ध्यान दूंगा कि जो मैं आपको आर्टिकल्स प्रोवाइड करता हूँ उन आर्टिकल्स के बारे में भी कुछ चर्चा करूँ, यदि समय मुझे इस बात की इजाज़त देगा तो। इससे होगा ये कि आपका भटकाव दूर होगा। आप सबके दिमाग में ये प्रेशर रहता है कि हम इस आर्टिकल्स में क्या पढ़ें क्या नहीं पढ़ें, तो शायद उसमें आपको थोड़ा सा सही रास्ता दिखाई दे सके। आज मैं आपको दो आर्टिकल प्रोवाइड कर रहा हूँ। एक आर्टिकल दैनिक जागरण का है, जो राजद्रोह कानून के ऊपर है, अश्विनी कुमार जी का लिखा हुआ। दोस्तों, आपको ये बहुत अच्छे से मालूम होना चाहिए अगर आप थोड़े समय से भी तैयारी कर रहे हैं, कि देखिए, लिखने वाले तो बहुत हैं, अखबारों में लिख रहे हैं, मैगजीन में लिख रहे हैं, लेकिन कुछ दिनों के बाद ही आपके दिमाग में ये धारणा बन जानी चाहिए कि किस विषय पर कौन अच्छा लिखता है, और साथ ही साथ कौन सही मायने में विचारपूर्ण तरीके से लिखता है। अच्छा लिखता है का मतलब ये नहीं है कि जो आपके आसानी से समझ में आ रहा हो या जिसे आपको पढ़ने में मजा आ रहा हो। अच्छा लिखना या कह लीजिए वैचारिक तरीके से लिखना, उन्हें हम कहते हैं जो आपको कंटेंट प्रोवाइड कर रहे हैं, जो आपको तर्क दे रहे हैं, अपनी बातों को बहुत ही रीजनेबल तरीके से रख रहे हैं, है ना, तार्किक तरीके से आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। ये बात अलग है कि आप उनकी बातों से सहमत हैं या नहीं है, उसे छोड़ दीजिए। इंपॉर्टेंट बात यह है कि उसने एक विचार दिया है, केवल सुपरफिशियल तरीके से बातें नहीं कही गई हैं। तो अश्विनी कुमार जी का जो आर्टिकल है राजद्रोह कानून पर, ये हमारे केंद्रीय मंत्री रहे हैं, और बीच बीच में मैंने काफी आर्टिकल्स इनके पढ़े भी हैं, अपनी बात को बहुत ही तथ्यपूर्ण तरीके से रखते हैं। इस आर्टिकल को आप पढ़ें। राजद्रोह कानून अभी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। आप देख रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है सरकार इस पर विचार करे, खत्म करने की कोशिश करे, और सरकार भी इस पर विचार कर रही है। तो इन्होंने देखा कि अब इसे खत्म कर देना चाहिए, इन्होंने अपने पॉइंट्स दिए हैं। तो आपको चाहिए कि आप इसमें से जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो उन्हें आप नोट कर लें। बहुत ज़्यादा जैसे राजद्रोह कानून पर हो सकता है कि आपको 50 आर्टिकल पढ़ने को मिले, ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, एक दो अच्छे आर्टिकल आपको पढ़ने को मिल जाए, एक आध दो अच्छा एडिटोरियल कमेंट पढ़ने को मिल जाए, बस आप पढ़िए और फिर छोड़ दीजिए, आने दीजिए 50 आर्टिकल्स, आपको फिर आपकी जरूरत नहीं है। इस बात का आप ध्यान रखिए प्लीज़ आर्टिकल पढ़ते समय। अदरवाइज तो इतनी भरमार है चीज़ों की कि आप उन्हीं में उलझ जाएंगे, और पता लगा कि उनसे जो फ़ायदा उठाना चाहिए आप उसका फ़ायदा नहीं उठा पा रहे हैं। ठीक इसी तरीके से जो दूसरा आर्टिकल है वो चेतन भगत का है, और खासकर इन्होंने जो अभी आप देख रहे हैं कि मंदिर और मस्जिद के जो मामले चल रहे हैं उस पर अपना विचार व्यक्त किया है। चेतन भगत जी की जो राइटिंग है उसमें मुझे एक बात अच्छी लगती है कि वो अपनी बात को बहुत ही स्पष्ट तरीके से बिना किसी लाग लपेट के रखते हैं। आप सहमत हो सकते हैं, असहमत हो सकते हैं, वो एक अलग बात है। इसमें उन्होंने अपने विचार दिए हैं, और विचार ये दिए हैं कि ठीक है 1991 का अपना एक एक्ट आ गया है कि भैया जहाँ जिस तरीके का की व्यवस्था है उसमें बदलाव न किया जाए, लेकिन उसका एक व्यावहारिक पक्ष दूसरा है जो ये कहता है कि नहीं, कुछ कानून ऐसे होते हैं, कुछ स्थितियां ऐसी होती हैं जिनमें बदलाव जरूरी होता है, और उसे आपसी सहमति के आधार पर कर भी लिया जाना चाहिए ताकि हमारी जो सामाजिक संरचना है वह बेहतर हो सके। तो इस तरीके से उन्होंने अपना एक ओपिनियन दिया। तो आप कुछ मत कीजिए, इसमें से केवल वही एक दो जो पॉइंट है उन्हें नोट कर लीजिए, बस बात खत्म हो गई। तो इस तरीके से ना धीरे 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 आपके पास बहुत अच्छी सामग्री इकट्ठी होती चली जाएगी। देखिए, जब आप टॉपर्स की बातें सुनते हैं कि मैं अपने नोट्स बनाता था, मैं अपने नोट्स बनाती थी, तो क्या करते थे? ऐसा थोड़ी है कि उन्होंने एक आर्टिकल 1000 शब्द का पढ़ा और उसे 300-400 शब्दों में समराइज कर दिया, ऐसा नहीं करते। उसमें से बस दो चार पॉइंट, एक दो पॉइंट जो उन्हें इंपॉर्टेंट लगते हैं, उस टॉपिक का नाम लिख करके उन पॉइंट्स को नोट कर लेते हैं, बात खत्म हो जाती है। तो नोट्स इसी तरीके से ही करंट अफेयर्स के बनाए जाते हैं। और प्लीज़ आप इस भ्रम में बिल्कुल मत रहिएगा कि जो करंट अफेयर्स के जब आप इस तरह से नोट्स बनाएंगे तो वो केवल मेंस में ही काम आएंगे, नॉट एट ऑल। वो प्री में भी आपकी बहुत मदद करते हैं। प्लीज़ अगर आप इस बात को इस तरीके से सोच रहे हों तो बहुत गलत सोच रहे हैं। जैसे अभी मैंने दो आर्टिकल्स की बात की, आप सोचेंगे कि ये टॉपिक्स तो मेंस के ही है, प्री में क्या लेना देना है, तो आप गलत सोच रहे हैं। नो डाउट कि अगर दोनों में से किसके लिए ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है तो मेंस के लिए इम्पॉर्टेंट है, लेकिन प्री में भी बहुत मदद इन सारी बातों से मिलती है। अभी जो संडे को एग्ज़ाम होंगे उनमें आपको इस बात के प्रमाण दिखाई देंगे। तो दोस्तों, अब जो भी थोड़ा सा वक्त बचा है उसमें मैं आप सबसे जो मुख्य विषय है उसके बारे में कुछ बातें करने जा रहा हूँ। प्री 2021 में जो कट ऑफ मार्क्स थे वो आपके सामने आ चुके हैं, बहुत ही दुखद कट ऑफ मार्क्स हैं। दुखद मैं जानबूझ करके कह रहा हूँ, जो कट ऑफ मार्क्स आए हैं वो बहुत कम हैं। दुखद इसीलिए मुझे लग रहा है कि इतने कम नहीं होने चाहिए, लेकिन मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि स्टूडेंट की कमजोरी है, मैं ये कह रहा हूँ कि ये जो पेपर्स जो दिए जा रहे हैं शायद उनकी कमजोरी है, मैं ताकत नहीं कहूँगा। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि मान लीजिए कि एक ऐसी बॉल फेंकी जा रही हो जो बाउंसर ही बाउंसर हो रही है, तो मैं क्या करूँगा? मैं अपने को केवल बचाने की कोशिश करूँगा कि मैं क्रीज पर बना रहूँ, आउट ना हूँ, रन तो नहीं बना सकूँगा। तो अगर मुझे रन बनाने का मौका ही नहीं मिलेगा तो फिर मैं अपने जो क्रिकेट की कला है उसे कैसे दिखा सकूँगा? नहीं दिखा सकूँगा। अगर बहुत ज़्यादा आप कठिन प्रश्न दे रहे हैं जिनके बारे में मैंने कभी सुना नहीं, तो मैं उन्हें अटेम्प्ट ही नहीं करूंगा। और जब मैं अटेम्प्ट ही नहीं करूंगा तो फिर आप इस बात का अनुमान कैसे लगाएंगे कि मेरी मानसिक क्षमता कैसी है, क्योंकि मुझे मौका ही नहीं मिल रहा है। लेकिन सेलेक्ट तो आपको करना ही है। तो ठीक है, जो मुझे आते थे उन्हें मैंने सॉल्व कर दिया है और उसमें मैंने 45% स्कोर कर लिया है और मैं सेलेक्ट हो गया हूँ, तो मुझे लगता है कि ये शायद बहुत सही एकेडमिक डिसीजन नहीं है। दोस्तों, अभी जो कट ऑफ मार्क्स आए हैं उनसे आप वाकिफ होंगे। थोड़ा सा मैं बता देता हूं कि जो जनरल कैटेगरी है उनके कट ऑफ मार्क्स एग्जैक्ट अगर आप कहेंगे तो 87.54 मार्क्स हैं। मोटे तौर पर मैं बताना चाहूँगा कि 44%, सोच करके देखिए कि 44% स्कोर बहुत पुअर स्कोर माना जाएगा, बहुत पुअर स्कोर है, और वो भी खासकर ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस में। जनरल कैटेगरी का 44% है। इसके बाद सेकंड में है जो इकोनॉमिक वीकर सेक्शन जो होते हैं उनका लगभग 40% है स्कोर। जो टोटल मार्क्स हैं वो 80.14 मार्क्स हैं। इसके बाद है शेड्यूल कास्ट का स्कोर है 38%, आप मोटे तौर पर कह सकते हैं 75.41 मार्क्स हैं टोटल। और जो शेड्यूल ट्राइब हैं उनका 35.5% मोटे तौर पर एग्जैक्ट मार्क्स हैं 70.71। तो आप देखिए कि कितने कम मार्क्स हैं। और अगर आप शेड्यूल ट्राइब के मार्क्स को ले लें 35.5%, तो 33% तो आपके जो सी सेट है उसमें क्वालिफाइंग मार्क्स हैं। तो क्या हमारा जो जनरल स्टडीज़ का जो स्कोर है धीरे धीरे हमारे सी सेट के क्वालिफाइंग मार्क्स के करीब पहुंच जाएगा? मुझे नहीं मालूम कि इस बार किस तरह का पेपर आएगा। पिछली बार मैंने इसको लेकर के एक आर्टिकल लिखा था दैनिक जागरण में, वो बहुत अप्रिसिएट किया गया था। पता नहीं अब यूपीएससी के पास पहुंचा नहीं पहुंचा, और अगर पहुंच भी गया होगा तो यूपीएससी ने उस पर विचार किया होगा या नहीं किया होगा, इसके बारे में तो दोस्तों कुछ भी नहीं बताया जा सकता। अभी पेपर आएंगे तभी हमारे सामने चीज़ें क्लियर हो पाएंगी। लेकिन अब सवाल ये उठता है, चूंकि अभी बिल्कुल एग्जामिनेशन आपके बिल्कुल पास में है और ये कट ऑफ मार्क्स आ गए हैं, तो अब आप क्या करेंगे? मेरा बहुत ही एक सिंसियर एडवाइस है। सिंसियर एडवाइस ये है कि ये जो कट ऑफ मार्क्स आए हैं ये आपके लक्ष्य नहीं होने चाहिए, बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। कभी भी किसी भी स्थिति में चाहे जो भी कट ऑफ मार्क्स आते हो, आपका लक्ष्य 50% से कम होना ही नहीं चाहिए। तो दोस्तों अभी जो आए हैं आप इनके जाल से अपने को बचा कर रखें, अपना जो लक्ष्य है वो थोड़ा हायर साइड में बनाएं कि मुझको किसी भी हालत में 50% स्कोर करना ही है। आप भूल जाइए जो मैंने अभी आपको बताया है 44%। मैंने जानबूझ करके आपको बताया है, क्योंकि अगर मैं ये बात आपके सामने नहीं रखता तो मैं मान करके चलता हूं कि शायद आपको तो मालूम होगा ही, और अगर आपको मालूम हो या न हो लेकिन सही बात आपके सामने रखना मैं अपना धर्म समझता हूं। तो आपका जो स्कोर कार्ड होना चाहिए, लक्ष्य होना चाहिए, टारगेट नॉट लेस देन 50%। अब सवाल यह है कि क्या इस 50% को आप हासिल कर सकेंगे? देखिए यहां भी जो 44% है ये तो कट ऑफ मार्क्स है, लोएस्ट है। इस बैच में भी लोगों ने 50, 55, 60% स्कोर किया होगा जिनके बारे में हम नहीं जानते, क्योंकि इस प्रिलिमिनरी स्टेज पर ही लगभग 9-10,000 का सिलेक्शन तो होता है। तो कुछ लोगों ने तो किया ना 60%, 65%, 55%, मोर देन 50% स्कोर किया ही किया होगा। तो अपने आप को आप उसमें डालने की कोशिश कीजिए, लोएस्ट साइड में आप कभी अपने बारे में मत विचार कीजिए, उसको अपना टारगेट मत बनाइए, हाईएस्ट टारगेट बनाइए, लक्ष्य रखिए, उसके लिए कोशिश कीजिए। ठीक है नहीं हो पाएगा तो, लेकिन पहले से तो कुछ बेहतर हम हो सकेंगे, क्योंकि अगर आप अपना टारगेट ही छोटा बनाएंगे तो फिर आप बताइए कि बात कैसे बनेगी, हाईएस्ट तो फिर स्कोर आप नहीं कर सकते। तो बस दोस्तों ये छोटी सी बात मुझे आप सबसे करनी थी, मुख्य विषय के बारे में बस इतना ही। न्यूज़पेपर्स की क्लिपिंग्स आप सबको प्रोवाइड कर रहा हूँ। ईमेल लिखने वाले मित्रों को धन्यवाद देता हूँ, और इन्हीं में से कुछ फ्रेंड्स के नाम हैं। अनामिका डे आसनसोल वेस्ट बंगाल से, प्रीतु ठाकुर, अबू होरेरा, मुस्कान सोनकर और आरती बोगचे, आप सबका बहुत बहुत आभार। और दोस्तों इसी के साथ ही आज के इस डेली ऑडियो लेक्चर को अब यहीं समाप्त करता हूँ। नमस्कार।